राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुकदास जी महाराज द्वारा 12 अप्रैल 1993 को साय लगभग 4 बजे गीता भवन सर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण 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 नारायण। भगवान का आदर होने से, भगवान की बातों का आदर होने से, मानो जैसे कोई एक नलिका हो चाहे कांच की बांस हुई, तो वह में जो चीज है उनसे विरुद्ध अठिलिया डाली जाए तो वो आगे निकल जाएगी। तो संसार का जो नाशवान का महत्व जमा है वो अविनाशी का महत्व स्वीकार करने से मर जाएगा विरोधी का। अब मैं देहादून में क्या कहा था भाई?
हाजी
सुबह के समय क्या बात कही थी आपको याद होगी? देहादून में सुबह के समय क्या विषय था? सत्र असत का विषय था ये अविनाशी विनाशी।
प्रकाश तो रहता है और परिस्थिति आती जाती है। प्रकाश तो है और सुख दुख आते जाते हैं।
ये दिल्ली में कहा था सवेरे?
ये बुझे था वो,
ये तो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में जो लास्ट दिन था उस रोज कहा था कि प्रकाश में जो क्रिया है होती है वो तो सब होती रहती है, प्रकाश रहता है।
तो विषय जो मेरे को अच्छा लगा तो उस बात ये थी कि नाशवान पदार्थों की तरफ जो आकर्षण है उसमें मूल कारण क्या है कि जैसे माता पिता से संतान पैदा होता है ऐसे परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति दोनों से ये जीवात्मा होता है। परमात्मा का अंश तो सत है और प्रकृति का अंश है वो असत है। असत है वो अहम है और सत है उसकी सत्ता। तो मैं हूँ, मैं तो प्रकृति का अंश है और हूँ ये पुरुष परमात्मा का अंश है सत का, मैं असत का अंश। अब असत का अंश है उसको हम मुख्य मान लेते हैं तब ये असत का आदर ज्यादा हो जाता है। मानो शरीर को और अहम को मान लेते हैं तब ये बड़ी मुश्किल होती है। आप कोई बुरा न समझे ऐसी एक बात मेरे मन में आ रही है। मैं हूं इसमें कहते अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम और ब्रह्म को एक करते हैं और ये विशेष प्रचार करते हैं कि अहम को अगर ब्रह्म के साथ में न मिलाएंगे तो द्वैतापत्ति आ जाएगी, मतलब द्वैत हो जाएगा, अद्वैत सिद्ध नहीं होगा। ऐसे विचार से मैं ब्रह्म हूं ये बात मुख्य है। ये हमें गीता को देखते हुए इतनी प्रिय नहीं लगती है, और प्रिय नहीं लगती नहीं बुरी लगती है। उस बार से माफी मांगी, वे माफी दे देना आप। बुरी क्यों लगती है? अहम साथ में रहेगा तो अद्वैत नहीं होगा, द्वैत ही दृढ़ होगा। गीता इसको नहीं मानती अहम को। ये महावाक्य है, जो महावाक्य में एक सामान्य वाक्य महावाक्य है, तो महावाक्य उनका नाम है जो जीव ब्रह्म की एकता का वाक्य, वो महावाक्य, और केवल जीव का वर्ण है वो भी वाक्य है, और जो परमात्मा का वर्ण है वो भी वाक्य है, दोनों की एकता का नाम है महावाक्य। तो तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि प्रज्ञानमान ब्रह्म अयम् आत्मा ब्रह्म, ये चारों वेदों के चार महावाक्य है। इन महावाक्यों में ये बताया गया कि अहम और ब्रह्म परमात्मा ये एक हो जाए, तो अहम करके जीवात्मा है और ब्रह्म करके परमात्मा है, इन दोनों की एकता। तत्त्वम असि, तत्व मन वो परमात्मा, तू नाम जीव, असि नाम ब्रह्म है। तो तुम नाम ब्रह्म जीव आत्मा हुआ, तो तुम नाम जीव है, तत्व नाम ईश्वर देख, असि पद चेतन आप है ताने रूप रेख, तो दोनों की एकता करने वाला वाक्य वो महावाक्य है, और एक एक को वर्ण करने वाला वाक्य है। तो दोनों को एक करने के लिए अहम की आवश्यकता मानते हैं, आवश्यकता मानते हैं, तो अहम खास अहम ही भेद को उत्पन्न करने वाला है। द्वैतापत्ति आती है अहम के रहने से, अगर अहम न रहे तो चेतन आत्मा चेतन ब्रह्म एक हो जाए, इनमें बाधक है अहम। इस वास्ते मैंने कई वर्षों पहले बड़ नीचे रेती में सत्संग होगा, उस सत्संग होने मैंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, तो मैंने कहा अहम ब्रह्मास्ति, तो पढ़े लिखे समझेंगे कि अहम और अस्थि कैसे होगा भाई, अहम तो अस्मि आएगा। तो मैंने इसी भाव से कहा था, उस समय मेरे में तो स्पष्ट नहीं था, अभी जैसा स्पष्ट है उतना स्पष्ट नहीं था, परंतु मेरा मन नहीं मानता अहम ब्रह्मास्मि में, अहम ब्रह्मास्ति। फिर उसका सुधार किया तो परमात्मा जी के कोई साधु बैठे थे, वो कहते ऐसे कैसे बोलते होते अहम ब्रह्म अस्ति कैसे, तो मैंने कहा अहम नास्मि ब्रह्म अस्मि, इसमें राजी हो गए। तो अहम नास्ति अहम नहीं है और ब्रह्म है, तो अहम शब्द है। उस समय में इतना मेरे को स्पष्ट भान नहीं था, अब बिल्कुल विशेष स्पष्ट भान होता है। इस वास्ते ये है कहते हुए मैं डरता हूँ, इस वास्ते भी माफ करना आप लोग, किसी को ठेस न पहुंचे। तो अहम है ये प्रकृति का कार्य है, भूमि रापो नगर वायु खान मन बुद्धि अहम, ये अपरा प्रकृति है, जीव है परा प्रकृति। तो परा प्रकृति वो परमात्मा का अंश है, और अहम ये प्रकृति का अंश है। ये अहम है, अहम मैं हूँ, तो मैं हूँ, हूँ हुआ परमात्मा का अंश, मैं हुआ प्रकृति का अंश, ये दोनों मिलने से हुई तिजर ग्रंथि। जड़ चेतन ही गांठ परी गई, जदपि मृषा छूटने कठिन है, ये झूठी है पर छूटने में कठिन है। अब उस कठिन ग्रंथि को मिटाने के लिए अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि की आवृत्ति की जाएगी, तो कितने वर्षों तक करो अहम को छोड़े बिना ब्रह्म का अनुभव नहीं होगा। मैं ब्रह्म हूँ, मैं तो एक देश रहेगा, ब्रह्म सर्वदेश रहेगा, अहम अनित्य होगा और ब्रह्म नित्य होगा, अहम विकारी होगा और ब्रह्म निर्विकार होगा, तो इनकी साथ में रहना नहीं बनेगा। ये बड़ी भारी एक बाधा है, इस बाधा को एक खास साधन माना है कि जीव ब्रह्म की एकता में अहम ब्रह्मास्मि होने से ही ठीक होगा। पहले गुरु कहता तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत् जो परमात्मा है वो तुम असि, तू है वो। तो ये कहने वालों का तात्पर्य तू के वाच्यार्थ में नहीं है, तू के लक्ष्यार्थ में है। तो लक्ष्यार्थ को कहकर कहते हैं, परंतु अहम और तुम के साथ में वाच्यार्थ ही आता है, मुख्य वाच्यार्थ की ही होती है। विवेचन में लक्ष्यार्थ कह दो भले, परंतु अनुभव करने पर अहम वाच्यार्थ ही आता है। तो उसमें मैंने ये कई बार कहा है कि लक्ष्यार्थ की एकता मत करो, वाच्यार्थ की एकता करो। वाच्यार्थ जो अहम है ये संसार का है, इसकी एकता करो तो वाच्यार्थ की एकता करने से तत्व ज्ञान होगा, लक्ष्यार्थ एकता करने से वाचिक ज्ञान ही होगे, अनुभव नहीं होगा। ये मैंने विवेचन किया या सुनाया है। तो लक्ष्यार्थ की एकता करके ही कहते हैं कि लक्ष्यार्थ एकता से अध्यक्ष बात हो, और उसमें अहम ब्रह्मास्मि उषात कहते हैं, तत्व में उपदेश कहते हैं, तत्वमसि गुरु कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि शिष्य कहता है। तो अहम और ब्रह्म, तत्व और तम, ये दो एक नहीं होते। ये जीव ब्रह्म की एकता है, जीव ब्रह्म की एकता कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती ही नहीं, और कभी एकता है नहीं। जब ब्रह्म के साथ एकता होती है उसमें अहम और तुम नहीं रहता है, तो अहम तुम न रहने से जीव पना रहता नहीं, ब्रह्म की ही ब्रह्म के साथ एकता होती है। लक्ष्यार्थ करके इस बात को कहते हैं, पर विवेचन में लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ दो कह दे, अहम को साथ लेने से लक्ष्यार्थ नहीं पकड़ा जाता है, अहम को पकड़ कर ही करते हैं, तो वर्षों लगने पर भी अनुभव नहीं होता है। ऐसी बात है। इस वास्ते तो ये सत असत दो है, तो मैं वहां से कहा था कि सत असत है, अविनाशी विनाशी दो चीज है। तो भगवान ने आरंभ में अशोच्यानंद सोचस्तम इसको लेकर के चला है, तो वहां मैंने मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे शीतोष्ण सुख दुख था आगमा पायु अनित्या स्थान स्थित स्वभारत, इस श्लोक लेकर मैंने व्याख्या की थी। पहले याद नहीं आया, अब कहने पर याद आ गया, इस श्लोक को लेकर मैंने कहा था। याद होगा आप लोगों को, किसी को याद है नहीं, मेरे याद आ इस बात को लेकर कहा है। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पायनो अन्यत्या स्थान स्थिति खस्व, इनको तुम सह लो। यंग ही न व्यसयंत्ये थे पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, सुख और दुख समान है, ये बात बताई थी। सुख आते हुए अच्छा लगता है, दुख जाते हुए अच्छा लगता है, दुख आते हुए बुरा लगता है और सुख आते हो बुरा लगता है। अरे दुख आते हो बुरा लगता है और सुख जाते हो बुरा लगता है, तो दोनों में समता कैसे है, तो समता ऐसे है, ये बात है। अब इसमें मैंने बात कहते कहते अंत में ये बात कही, एक है संयोग और एक है वियोग। संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। ये 20 श्लोक है, इसमें मैंने कई बार कहा है ब्रह्म नाम नहीं है, आत्मा नाम नहीं है, माया नाम नहीं है, प्रकृति नाम नहीं है, जीव नाम नहीं है, ईश्वर नाम नहीं है, ही नहीं नाम उसमें। आत्मनात्म का विवेक कर नहीं कहते हैं, सब चीज करता है, मगर मूल में आत्मा अनात्मा शब्द नहीं है, जो दार्शनिक शब्द वो नहीं कहा है। अविनाशी विनाशी कहा है, शरीर और शरीर ही कहा है, देह और देही कहा है, ऐसे शब्द कहे। इसका तात्पर्य है विवेक में, सत असत का विवेक होना चाहिए, तो असत का त्याग कर सत को ग्रहण करना है, ये खास उद्देश्य है। तो उसमें मैंने कहा संयोग और वियोग, आपका अभी संयोग हुआ, अभी थोड़ी देर में आप चले जाएं, हम चले जाएं, वियोग हो जाएगा। ऐसे सत्संग में आने में संयोग हुआ और संयोग सत्संग समाप्त होने पर वियोग होता है, तो संयोग के बाद वियोग, वियोग के बाद संयोग, ऐसे होता रहता है। परंतु संयोग होता है उसका वियोग अवश्यम भावी है, बालक जन्मता है तो अवश्यम भावी मरना है, तो संयोग का वियोग तो बिल्कुल ही है। यही कहा था, उगे सोई आंत में फूला सो कुमला, चिड़िया देवर ढह परे जाया सो मर जाए, तो जन्मा है वो मरेगा, तो मरेगा वो जन्म का नियम नहीं है। ये देवी गीता में आया है, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्य, परंतु ये अर्चेनम इसको तुम ऐसे मानो तो भी अर्चेनम नित्य जातम नित्यम व मन से मृतम, ऐसा तुम माना है तो तेरी मान्यता के अनुसार बात कही है, ये सिद्धांत नहीं है। आपका हमारा ये संयोग है, ये तो अनित्य है, वियोग में बदलेगा ही, परंतु वियोग संयोग में पीछा नहीं आएगा। तो इन दोनों में वियोग नित्य है और परमात्मा के साथ में योग नित्य है। इस बार नित्य योग पर ही पुस्तुति लिखी, परमात्मा के साथ में संबंध हमारा वो नित्य है और संसार के साथ हमारा अनित्य है। तो संसार के संबंध जो रहने वाला है नहीं, और भगवान का संबंध मिटने वाला है नहीं। तो अहम को साथ रखोगे तो अहम के नाश के लिए बड़ी मुश्किल होगी। अहम के नाश के लिए प्रश्न आया था, क्या अहम का नाश कैसे हो, उस पर मैं ले सका था, ये वहां सरदार दिल्ली में कहा, सरदार शहर में कहा था, तो अहम का नाश कैसे हो। तो अहम का नाश नहीं है, अहम का त्याग होता है, वो त्याग होने से नष्ट हो जाता है। और ये बात मैंने बहुत बार कही है कि जड़ चेतन दो है, इन दोनों का ज्ञान होता है, उसका नाम है विवेक ज्ञान। और विवेक ज्ञान हो, जड़ का अभाव होने पर जो होता है वो बोध होता है, ज्ञान। तो विवेक ज्ञान ही असली ज्ञान में परिणत हो जाता है। जब तक असत की सत्ता रहती है तब तक वो विवेक कहलाता है, और असत की सत्ता मिटने के बाद में बोध कहलाता है, तब तो ज्ञान कहलाता है। तो वियोग नित्य है संसार में, परमात्मा का योग नित्य है। तो गीता का योग क्या है, समत्वम योग उच्यते, तो सम क्या है, यही तेजस्वर्गो ये शाम साम्य स्थित मन निर्दोषंग ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि से स्थिता। इस मैंने शिव जी का उदाहरण लिया था, आज भी कहा था कि दोनों पार है, सब दिखता नहीं, सूर्य तो सूर्य उदय होगा क्या पता, कि उसे पता लगा कि सामने पार है, उसकी चोटी पर घाम आ गया, तो हम कहते हैं सूर्योदय हो गया। यदि सूर्य दिखता नहीं, पहाड़ है आना, न दिखने पर भी सामने पहाड़ पर घाम आया, तो कहते हैं कि ये सूर्य उदय हो गया। अगर सूर्य उदय न होता तो पहाड़ की चोटी पर घाम कैसे आता। ऐसे तत्व की प्राप्ति होगी, इसकी पहचान क्या है, ये सब साम्य स्थित मन, मन जिसका साम्यावस्था में स्थित हो गया, या जीत जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया। और अहम रहेगा तो हार गए आप, संसार जीत गया, ये सब संसार अहम में भरा हुआ है, मैंपन में भरा हुआ है। संसार का बीज है मैंपन, ये खास संसार का बीज है। और परमात्मा का खास अंश है हूंपन, है पन, सत्ता पन। तो नित्य सत्ता स्वरूप आपका है, मैं ब्रह्म नहीं है, मैं की सत्ता ब्रह्म है, मैं प्रकृति है, मैं छूटता है निर्ममो निरहंकार शांति मिली गति, निर्ममो निरहंकार होता है उसको शांति मिलती है। तो अहम नहीं है, तो अहम का त्याग है, तो अहम का त्याग होने से सत्ता रहती है। वो सत्ता ब्रह्म के साथ एक स्वतः है स्वाभाविक, वो एकता करनी नहीं पड़ती है। एकता नहीं, वहाँ अद्वैत कहा है, एक नहीं कहा है, अद्वैत मत कहा है, मानो द्वैत नहीं है, है क्या विधान नहीं बताया है। इस वास्ते मैं कहता हूँ एक विधान होता है, एक विहित विशेष नहीं, विहित साधन है, एक निषिद्ध साधन है। तो निषिद्ध साधन से जो लंबी सिद्धि होती है वो विहित से नहीं होती है, क्योंकि अंत में निषेध तो प्रकृति का ही करना है। तो अब दुर्गुण दुराचारों का नाश करना है, त्याग करना है, ये साधन मुख्य है। अभी लोग झूठ कपट करके धन कमाते हैं और धन से दान पुण्य आदि करेंगे कल्याण हो जाएगा, तो झूठ कपट के त्यागे बिना कल्याण नहीं होगा। असत का त्याग है उसे सत्य की प्राप्ति है, सत्य के चिंतन से सत्य की प्राप्ति नहीं होती। कारण उसमें है कि असत की सहायता के बिना सत्य का चिंतन कोई कर ही नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है कि सत्य का चिंतन असत्य की सहायता के बिना हो जाए, और जिसकी सहायता से सत्य का चिंतन होता है सहायक का नाश साधक कैसे करेगा। बिना असत के सहारे लिए सत्य का चिंतन सत्य का कुछ कर सकता है, विवेचन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, सुन सकता है, असत के सहारे बिना कर ही नहीं सकता। इस वहां की शंका हो बोलो, ये पक्की सिद्धांत की सच्ची बात है। तो असत का निराकरण करना है तो दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना चाहिए। दुर्गुण दुराचार त्यागे बिना सद्गुण सदाचार लाए जाते हैं। पहले दुर्गुण दुराचार को स्वीकार किया जाए, फिर उनको छोड़ा जाए। तो छोड़ने में ये जो बात कही जाती है, अध्यारोपापवादा अध्याम प्रथम प्रपंचम प्रपंचते, पहले अध्यारोप करो अपवाद करो। तो अपवाद तो बातों बातों में रह जाएगा, अध्यारोप है वो पक्का रह जाएगा, बातों बातों में आरोप का निराकरण होगा। तो अध्यारोप क्यों करो, अध्यारोप तो स्वतः हुआ हुआ है, अपवाद करो। अपवाद करो मान असत अपना स्वरूप नहीं है, इसका निषेध करते करते सत्स्वरूप स्वतः सिद्ध रहेगा, तब तो बोध होगा। और सत असत का करके सत का चिंतन करोगे, श्रवण करोगे, मनन करोगे, निध्यासन करोगे, ध्यान करोगे, समाधि करोगे, तो बिना असत के संबंध के समाधि होती ही नहीं, निध्यासन होता ही नहीं, मनन होता ही नहीं, श्रवण होता ही नहीं, इनके असत के साथ नहीं होगा। तो असत के त्याग की आवश्यकता है, असत के सहारे की आवश्यकता नहीं है। तो वेदांत की प्रक्रिया से बोध ऐसा होता नहीं है जल्दी, हो जाए उसका तीव्र वैराग्य हो उसको हो ही जाए, पर इतना तीव्र वैराग्य कहाँ देखने में नहीं आता। विवेचन से असत का संबंध लेना ही पड़ेगा, समाधि तक असत का संबंध है, तभी समाधि वित्थान दो अवस्था होती है। असत का संबंध न हो तो दो अवस्था नहीं होगी, वो सहजावस्था होगी, स्वतः सिद्ध समाधि होगी, उसमें व्यत्थान नहीं होता है। योग आदि की जो समाधि है उसमें दो अवस्था होती है, वेदांत की सात्विक स्थिति में दो अवस्था नहीं होती, पर ऊंचे से ऊंचे ग्रंथों में समाधि और विधि, समाधि और विस्थान, ये दोनों वर्णन हुआ है। जैसे भगवद गीता है, उसकी टीका मधुसूदन मेरे को बहुत प्रिय लगती रखता था, उसमें स्थित प्रज्ञ से इसका भाषा समाधि केशवर सिद्धि किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम, ऐसे चार प्रश्न किए हैं। उसमें सप्रज्ञ से का भाषा इसका एक उत्तर दिया, एक प्रजाति इसमें प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्प्रज्ञ तदोच्यते, ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। उसमें सिद्धि किम प्रभाषेत इसके दो श्लोक उत्तर दिया, और ब्रजेत किम के छह श्लोकों ने आठ श्लोकों से ऐसे मधुसूदन ने विवेचन किया है। उसमें ये विवेचन किया है कि सिद्ध पुरुष की दो अवस्था होती है, एक समाधि अवस्था होती है, एक व्युत्थान अवस्था होती है। तो प्रजाति गाला कामान सर्वान आत्मनिव आत्मा ये समाधि अवस्था का प्रश्न है, और सिद्धि किम प्रभाषेत किमाशेत ब्रजेत किम ये उत्थान अवस्था का प्रश्न है। ऐसे समाधि उत्थान दो अवस्था सिद्ध पुरुष की मानी है मधुसूदनाचार्य ने, जिनका अद्वैत सिद्धांत के निर्माता है, वे मामूली नहीं है। अद्वैत भी थी पथ गई उपास्या, ऐसे अपने को लिखते हैं स्वानंद संघासन दीक्षा, तो ऐसे अपने को मानने वाली ये बात लिखते हैं। तो ये हमारे जस्ती नहीं है, छोटे मुंह बड़ी बात है, पर आप इस पर विचार करो और प्रश्नोत्तर करो। आप गहरे उत्तर के प्रश्न करो तो मेरे चित्त में बहुत प्रसन्नता होगी, मैं राजी होऊंगा। मेरी बात को युक्तियों से शास्त्रों से काटोगे मैं नाराज नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं तो इस बात का एक जानने का जिज्ञासु हूँ, मैं तो इस बात को जानना चाहता हूँ। तो बिना विरोधी प्रश्न आए बिना उसका मंथन नहीं होगा, मंथन बिना मक्खन नहीं आता। दही में मंथन करते हैं, विलोना करते हैं तो मक्खन आ जाता है। इस बार बाले बाले जायते तत्वबोधा, तत्वबोध होता है उनसे। इस बात से इस विषय में ठीक तरह से इसको जानने के लिए प्रश्नोत्तर करो। तो ये जो बात है दोनों के ठीक तरह से दोनों का अलग अलग जानना, ये गीता में विलक्षण रीति से आई है, वेदांत में अभाव नहीं, ये बात आई है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति, ये बिल्कुल विचार सारे में आया है और सही भी आया है। नित्य निवृत्ति की निवृत्ति, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, तो नित्य प्राप्त है वो तत्व है, अहम नहीं है वहां, अहम नित्य प्राप्त नहीं है। इसके लिए मेरे को बात मिली है बहुत बढ़िया, समझने के लिए समझाने के लिए बहुत बढ़िया बात मैं वो बताता हूँ। मेरे को अच्छी बात मिली है, वो ये है कि अपने जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्था होती है, जो सबके अनुभव की बात है। जागृत अवस्था अभी है, और स्वप्न अवस्था जो स्वप्न आता है वो स्वप्न अवस्था है, और सुषुप्ति अवस्था उसका नाम है जिसमें कुछ भी याद न रहे, कोई संकल्प विकल्प न रहे, वो सुषुप्ति अवस्था होती है। तो सुषुप्ति का अनुभव होता है पर विवेचन नहीं होता, वर्णन नहीं होता। जगने पार कहते हैं कि ऐसा मैं सुख से सोया मेरे कुछ भी पता नहीं था, ये दो बात आते हैं संस्कृत में, सुखम अस्वापसम न किंचित अवेजिषम, ऐसे सुख से सोया मेरे कुछ भी पता नहीं था न अवेजिषम, कुछ पता नहीं। तो ऐसी वो सुषुप्ति अवस्था होती है, तो उसकी स्मृति आती है कि कुछ भी ज्ञान नहीं था, तो ज्ञान क्यों नहीं था कि अहम नहीं था, अहम अविद्या में लीन हो गया। अहम रहता है जागृत में स्वप्न में, तब तो संसार रहता है, और अहम न रहने पर संसार नहीं रहता है, वह चेतन रहता है। तो अहम के भाव को भी चेतन प्रकाशित करता है और सुषुप्ति में अहम के अभाव को भी चेतन प्रकाश करता है। वो चेतन नित्य निरंतर रहता है, अहम सुषुप्ति में नहीं रहता है। ये बात बहुत मार्मिक अच्छी साधक की बड़ी काम की मेरे को मालूम दी है। कैसे कि अहंकार रहित हो, कैसे कि अहंकार से रहित आपकी सत्ता है। क्या पता कि सुषुप्ति में होती है, मूर्छा में होती है, अहं से रहित आपकी अनुभूति है, समाधि में भी होती है। तो वो अहम नहीं रहता है। जैसे अहम है, अहम के साथ मनुष्य हूं मैं, ऐसा होता है। परंतु अनेक दूनी में जाता है तो मैं पशु हूं, मैं पक्षी हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं गधा हूं, ऐसा अहम के साथ में वो शरीर का भाव लग जाता है। तो शरीर का भाव है तो अहम अहम बदला है, सत्ता नहीं बदली है। परंतु ये अनुभव नहीं होता अहम बदला है मालूम होता। जैसे मैं बालक हूं तो मैं जवान हुआ तो देह नो अस्मिन यथा देहे कोमारम यौवनम जरा, तीन अवस्था होती है तथा देहांतर प्राप्ति। बालक जवान हुआ, जवान से बुद्धा हुआ, जवान से मर गया, मरने के बाद जन्म गया, जन्म गया तो वहां बालक हो गया। तो बालक से जवान, जवान से बुद्धा, बुद्धे से फिर जवान, ऐसा होता रहता है। तो उसमें होता रहता है तो उसकी सत्ता मुख्य रहती है, अहंता नहीं रहती। जैसे मैं बालक हूँ, इसमें मैं बालक हूँ, अब मैं जवान हूँ, तो बालक के साथ रहने वाले मैं को अब जवान के साथ लगाया है, मैं नहीं रहा है। किंतु मैं पन में जो अपनी सत्ता थी वही सत्ता रही है जो जवानी को प्रकाशित करती है। तो भान होता है कि मैं जवान हो गया, मैं जवान नहीं हुआ है, वास्तव में मैं ही जवान हुआ है। जान लिया, मैं जवान नहीं हुआ है और मैं ही जवान हुआ है। तो मैं करके सत्ता है वो जवान बालक नहीं हुई है। मैं करके जो शरीर है जिसकी सत्ता नित्य नित्य है, अनित्य सत्ता है, वो अनित्य ही बालक से जवान हुआ है। नित्य बालक नित्य है, बालक नहीं था ना जवान था, दोनों में नहीं है। वो नित्य जवान और बालक है, दोनों से अलग है। वो नित्य है, निर्विकार है। तो अहम के बिना का अनुभव अपने को करना चाहिए कि सुषुप्ति में बिना अहम का आपके सत्ता का अनुभव होता है। तो कल मैं जगता था, आज मैं जगता हूँ, रात मेरे को नींद आई, कुछ पता नहीं रहा। परंतु ये नहीं कहता कि गाढ़ नींद में मेरी सत्ता नहीं रही, मैं तो अब हुआ हूँ, पहले था नहीं। जागृत हो गई, सुषुप्ति हुई तो सुषुप्ति में सत्ता नहीं थी, ऐसा नहीं कहता है। अपनी सत्ता तो निरंतर मानता है और अहम की अभाव मानता है। जागृत में अभी अहम का भाव है, सुषुप्ति में अहम का अभाव है। स्मृति से ये मालूम होता है कि अहम की रहित आपकी सत्ता है, आप वैसे के वैसे हैं। पहले जागृत में थे, स्वप्न नहीं रहे, अहम है वो सुषुप्ति में नहीं रहा, उसमें सुषुप्ति का सुषुप्ति में आपसे अहम का विच्छेद नहीं हुआ है। अहम अविद्या में लीन हुआ है और ज्ञान से अहंकार मिट जाता है। निर्ममो निरहंकार से शांति मिली, वो शांति को प्राप्त करता है। ऐसा ब्राह्मी अहंकार रहित होने ऐसा ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म अवस्था होती, जब अहम से रहित होता है। निर्ममो निरहंकार से शांति मिली, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये अहम ब्रह्म नहीं है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति है। तो अहम का अत्यंत अभाव है वहाँ, निर्ममो निरहंकार। इस बात से अहम रहते हुए ब्रह्म का अनुभव नहीं होता। परंतु आग्रह ऐसा है आदर बुद्धि के कारण से कि महावाक्य है, इससे ज्ञान होता है। महावाक्य के बिना ज्ञान नहीं होता। महावाक्य में तुम आता है, अहम आता है। गुरु तो कहते तत्त्वमसि, शिष्य कहता अहम ब्रह्मास्मि। तो तुम और अहम को कायम रखते हैं, और मैं और तो बोलते माया जेवरी की ना जीव ने कहा, मैं मेरे की जेवरी गर्व बंदी वो संसार, दास कबीरा क्यों बदे जाके नाम आधार। अब इसमें शंका करो आप लोग, क्षमा तो मैं पहले ही मांग ली, शंका करो जिसे विषय खुलेगा। माया रहे तो मुकुंदा अहम माया है, तुम तो माया है, मैं तोड़ तोड़ माया जी उसके जीव ने कहा। माया रहित मुकुंदा आपका स्वरूप माया रहित है। माया रहित और जीव ब्रह्म की एकता नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म के साथ ब्रह्म की एकता होती है। जीव पदार्थ ब्रह्म पर मिटता है, ईश्वर पदार्थ मिटता है, दोनों उसमें जीव पदार्थ मिट जाता है, ईश्वर पदार्थ रह जाता है। लिखा है कि ईश्वर और जीव ये दो बसरा है माया धेनु का। शेर जी के सामने बात आई कि माया रूपी धेनु के ये ईश्वर एक बसरा है। शेर जी ने कहा कि जीव बसरा है और जो ईश्वर वो सांड है, माया का बसरा नहीं है। मानो वो माया अधिपति है, माया धीश है, माया के बस में जीव है, परमात्मा माया के बस में नहीं है, माया उसी बस में है। पुरुषार्थ करके नहीं हटा सकता, पुरुषार्थ में असत का साथ साथ लेना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ कुछ भी करेगा तो असत के सहारे बिना पुरुषार्थ नहीं कर सकता, समाधि तक नहीं कर सकता। तो प्रभु कृपा को कुछ स्वीकार कर कर दो, प्रभु की कृपा से ठीक हो जाता है। नजीक आ जाओ, कुछ बात होना तो नजीक आ जाओ भाई। आपका तात्पर्य क्या है वो बता दो पहले, फिर बात करें। आपका तात्पर्य क्या है? सर्व बंधे नाती है, बहुत सरल उपाय हे ना, उपाय तो मेरे को बहुत आते हैं। कई दिन हुआ उपाय सीखे और किया गया काम क्या किया, उम्र भर में काम क्या किया, तो ये काम किया हमने। गोस्वामी ने कहा जो बांधे से भी छोड़े वही चलेगा। नारायण 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 नारायण।